अब अगली आयत में देखिए इक्वलिटी की बात है। आज वेस्ट बहुत शोर मचाते हैं ना कि मर्द को औरत के इक्वल कर दो, तो लिख लीजिए औरत और मर्द इक्वल हैं। कहां? नेकियों के मामले में, जन्नत के मामले में। पूरी जन्नत में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं कि ओनली फॉर मेन, वुमेन आर नॉट अलाउड। पूरी जन्नत में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है औरत और मर्द की। ये जो दुनिया में फर्क है, ये हकूक और फराइज का जिम्मेदारियों के लिए है। तो फरमाया आयत 97, मन अमीला सालिहन मिन ज़कर न उन्सा, जिस किसी ने भी नेक अमल किया खा वो मर्द हो या औरत हो, यानी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। शर्त एक है, वहुवा मोमिन, हो वो ईमान वाला। ईमानी हालत एक हो, जेंडर से कुछ नहीं होता, मर्द और औरत का ईमान एक जैसा है। तो फल अनुखियन्नहु हयातन तैयबा, तो हम ऐसे लोगों को जिंदगी देंगे, पाकीज़ा जिंदगी। ये वो आयत है जो मैं कह सकती हूँ कि मेरे दीन का बचपन है। दीन का बचपन समझते हैं, जब नया नया दीन बंदे को समझ आता है। ये आयत जो थी ना, जिसने मेरा दिल पकड़ लिया था कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि दीन पे आते हैं तो जिंदगियां खराब हो जाती हैं। हालांकि इस आयत पे मैंने आपको बीसियों बार तो जुमला बोला है कि दीन पे आने से पहले दुनिया बनती है। फलनुहियन्नहु हयातन तैयबा, ऐसे लोगों की जिंदगी में चाहे कोई ग्लैमर ना भी हो, रूखी सूखी खाए, लेकिन इनको सुकून कल्ब मिलता है, दौलत होती है, इनके दिल गनी होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलगिना गिनन नफ्स, असल अमीरी तो दिल की अमीरी है। अगर इंसान का दिल गनी है ना, तो इंसान वाकई गनी है। और ढेरों दौलत पाकर भी दिल लालच के फंदे में गिरफ्तार है ना, तो ऐसा शख्स गनी नहीं है, फकीर है। अल्लाह ताला कहते हैं नेक इंसान को दुनिया में ही गिना, गिना समझते हैं बेनियाजी। कुछ लोग होते हैं हर चीज पे मरते हैं, हाय ये हाय ये हाय, और कुछ को गुजार भी लेते हो, कहते कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। तो ये कुछ नहीं चाहिए गिना है, जिसको कहते हैं बंदा मोमिन। शेर मुझे आता नहीं, लेकिन अलामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोमिन की मिसाल दी, जिसमें क्या कि आरजुएं जिसकी कलील, मकसद जिसके अजीम। मोमिन बड़े बड़े मकसद रखता है। और ख्वाहिशों का हाल है, कपड़े यही ठीक है, जूता यही ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, खराब तो नहीं हुआ, ठीक है। उसको तो कुछ चाहिए नहीं दुनिया में, ये है वो गिना। देखिए ना, एक बंदा जिसको जो भी मिले फिर भूखा, तो वो खुश कब रहेगा? और एक वह कि कुछ भी ना हो तो वो खुश है, तो उसको कौन पीछे करेगा? एक शख्स है ऊपर छत पे खड़ा हो गया, ऊंचा हो गया ना, अब खतरा क्या गिर सकता है। और एक शख्स जमीन पे खड़ा है, उसको क्या खतरा? कोई खतरा नहीं है। तो असल बात यह है कि अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नल क़ुलूब, सूरत रात आयत 28 में हमने पढ़ा कि आगाह रहो कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों में सुकून है। और इसी को हमने सूरत यूनुस आयत 62 में पढ़ा था, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह रहो यकीनन औलिया अल्लाह पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। तो बंदे मोमिन की जिंदगी पाक होती है। अब शर्त देखिए इसमें, पाक जिंदगी। अब ये पाकी कैसे आएगी? क्योंकि लफ्ज़ हयातन तैयब है ना, तो आप देखिए कि तैयब करने के लिए, जो फिर मैं दोबारा उसी पे आऊँगी जो बार बार कहती हूँ, कि दिल को पाक करना पड़ेगा। क्या अलामा इकबाल कहते हैं ना कि पाक दिल पाक जो, पाकीज़ा दिल होगा ना तो ज़िंदगी पाकीज़ा होगी। आपका लोगों के बारे में सोचने का अंदाज ही बदल जाएगा अगर आपका दिल लोगों से पाक होगा। दिल में बदगुमानियाँ नहीं हो, यानी आप एक लिस्ट बना लें कि मैं हयात तैयब लेना चाहती हूँ, मगर कैसे? अल्लाह उस बंदे को किस किस चीज़ से पाक करता है? पहली बात, उसके दिल से सब बदगुमानियाँ निकल जाती हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि दिल बदगुमान हो तो इंसान को स्विट्जरलैंड जाके भी मज़ा नहीं आता। वो किसी दुनिया के खूबसूरत मुकाम पे बैठा, वो सोच रहा है फुला मेरे खिलाफ, फुला मेरा दुश्मन, लेग पुलिंग दिस एंड दैट और फेवरेटिज्म, और ये तो मेरे से तो सारी दुनिया नाराज है, सास मेरी अच्छी नहीं थी, मियाँ मेरे अच्छे नहीं, या बच्चे भी अच्छे नहीं निकले। ठीक है, तो पहले दिल बदगुमानियों से पाक, फिर दूसरी कमाई हराम से पाक। अल्लाह ताला रिज्क को पाक करता है। और ये बात मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ बड़ी आजजी के साथ, जब तक पेट से लुकमे हलाल के नहीं आएंगे, कभी भी जिंदगी पाक नहीं होगी। वो अल्लाह किसी न किसी रंग में फिर पाक कर ले, बीमारियों में, दुखों में, तकलीफों में डाल के, उसकी मर्जी है। लेकिन बंदा खुद पाक कर ले ना तो बहुत आसान है। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसे सम टाइम आप देखिए कि बाजू में कोई दाना निकल आता है ना, बाज ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका मुंह नहीं होता, गढ़ बोलते हैं उसको, अंदर सब पस होती है। अब वो पस जो है ना, वो आपकी पूरी बाजू अकड़ा देती है। इमेजिन करें ज़रा, अब आप उस पस को निकलवाने के लिए डॉक्टर पे जाएंगे तो वो तो फौरन कट लगाएगा और बैंडेज लगा के चीखें निकलेंगी आपकी। अगर तो ये हौसला है तो कर लें, और कुछ कहते नहीं डॉक्टर पे नहीं जाना, फिर वो क्या करते हैं, आराम से सहलाते हैं। सहलाने से हल्का सा ऊपर कुछ मुंह बनता है, फिर वो सुकून से गीली रुई के साथ पस निकाल देते हैं। तकलीफ होती है लेकिन उतनी नहीं होती। दूसरा, आपके जख्म को हाथ लगाए जान निकल जाती है, आप खुद करें तो ठीक है। बस यही है पाकीज़ा, या तो खुद अपने आप को पाक कर लें या फिर अल्लाह को करना आता है। पुल सरात पे जाके अल्लाह हराम गोश्त को और हराम खून को निकालेगा। आंकड़े कलूब इस तरह की जैसे कुंडियाँ नहीं होती, उसमें लोग लटकेंगे जाके, वहाँ नुचड़ेगा खून, अल्लाह वहाँ पाक करेगा। जब तक कमाई पाक नहीं होगी, ना सोच पाक, ना दिल पाक, ना दिल दूसरों से खुश होगा। फिर इसी तरह आप देखिए, बेकार रस्में निकल जाती हैं जिंदगी से, रस्मों से पाक। आप आज से 10 साल पीछे की जिंदगी सोचें, जब आपका दीनी सफर शुरू हुआ हर वक्त फिक्र क्या थी, किसकी सालगिरह आ रही है, किसका तोहफा, किसको देना। आज मंगनी में जा रहे हैं, अब उपटन में जा रहे हैं, आज हाउस वार्मिंग में जा रहे हैं, अब शादी में जा रहे हैं। लोग तोहफे दे दे के भी थक जाते हैं, देते भी हैं लेकिन मजबूरी में देते हैं। एक वो है उसको दें जिससे आपका दिल चाहे, उसको तो हर वक्त देना चाहते हैं, और एक वो जहाँ खानदान भी हैं और भारी भारी उनको सलामियाँ और बर्तने और तोहफे, और फिर भी खुशी ना हो अगले को। क्या दीन पे आने के बाद वो कम होते हैं कि नहीं होते हैं? हयातन तय, आप देते हैं किसी को इसलिए देते हैं कि अल्लाह ने आपको कहा इताइज़िल कुर्बा, फिर अब ये सोच नहीं देते। जैसे अक्सर मैं इस चीज़ पे अपने दिल को बहुत बड़ा करती हूँ, और हालांकि ये बहुत मुश्किल है मुझे पता है, कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप तोहफा लेके आएंगे, मैं उस दिन नहीं लेके जाती। मिसाल है किसी की शादी वाला दिन है, सब हाथों में तोहफे पकड़े, ये भी पता है घर वाले को मुश्किल ही होनी है, वो संभालते ही फिरते हैं बेचारे, तो मैं कहती हूँ कितनी बेवकूफ़ी है, पहले ही वो बेचारा दुखी है, मैं अब उसका और कुछ नहीं काम करूँ, मैं आज उसको एक गिफ्ट दूँ सिर्फ इस सोच में कि मैं जाऊँ तो मेरे हाथ में खूबसूरत बैग हो। छोड़ो, बाद में दे दो, पहले दे दो, कुछ नहीं होता। आपने देना, आपकी मर्जी, आपने किसी को बताना थोड़ी है, दिखाना क्या। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, जहां कोई आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाए ना कि दो, वहां बिल्कुल ना दे। आपके सच्चे जज्बे वो हैं कि जहां आपकी मोहब्बत हो, क्योंकि ये आज नसूर बन गया ना, लोग सिर्फ इस वजह से नहीं फिर जाते कि है कुछ नहीं देने को। आज किसी के घर जाना एक बड़ा मारूफ हमारे यहां बन चुका है, कुछ लेके जाओ, अच्छी बात है, आपका दिल करता है आप जैसे अपने घर में लेके जाते हैं वहां भी जाएं, लेकिन इसको मजबूरी ना बना ले, कभी ले गए कभी नहीं ले गए, कोई सोच रहा है तो ना ले जाए, ना सोचे तो ले जाए, तो जिंदगी पाक होती है। फिर इसी तरह हयातन तैयब, किस चीज से पाक, रस्मों से पाक, दिखावे से पाक, रियाकारी से पाक, और सबसे बढ़ के कह लें कि दिल गुनाहों से दूर हो जाता है। वो चीजें जिस पे कल दिल अटका हुआ था ना, उससे दिल पाक, वो ख्वाहिश ही नहीं आती उन चीजों को देख के, वो गाने अब कोई जज्बात में उभार ही नहीं पैदा करते, उन अदाकारों और गुलकारों के नाम सुन के आ ही नहीं निकलती, जिंदगी पाक कर दी। आज पाकीजा जिंदगी के लिए इंसानियत भटक रही है, आज नसब महफूज नहीं है, बाप भाई की निगाहें पाक नहीं है, आज औरतें छुपी होने की बजाय खुली फिरती हैं, ये सजा है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह सुबहान तआला दिलों को पाक कब करता है, जब इंसान की फिर सोच पाक हो, हर चीज से पाक करके जिंदगी साफ। और ऐसे लोगों पर रश्क आना चाहिए, आप भी जानते होंगे, मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूँ, उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि खानदान में किसके घर शादी है, और हम ना गए तो वो हमें क्या कहेंगे, वो नहीं जाते, और मेरा नहीं ख्याल के लोग उनका बुलाते भी होंगे, लेकिन ये मुझे पता है कि उनकी बहनें, उनके भाई, उनके लोग उनसे दे लव दें। क्यों? जब मौका आएगा उन्होंने अपनी बहनों को भी तोहफे देने हैं, भाइयों को भी देने हैं, खिदमत भी करनी है, लेकिन वो मजबूर नहीं है। हम तो मजबूर है ना रस्मों के हाथों और शादियों और गमों के, ना तो काम ही नहीं कर पाते। एक शादी की आती है, हमारा फोकस ही सारा टूट जाता है दीन के नाम पे। तो हयात तैयब उसकी है जिसने इस जिंदगी के मकसद को समझ लिया, पाकीज़ा जिंदगी, फिर मर्दों की नजरें पाक होती हैं। आप सोचें ना, वो शौहर जो सिर्फ आपको देखे, क्या इससे भी बड़ा एक औरत के लिए सुकून है? औरत काली है, गोरी है, मोटी है, दुबली है, पतली है, उसके मर्द की नजरें पाक है, किसी को नहीं देखता, ऐसी औरतें तो ठलाती फिरती हैं कि मुझे पता है मेरे मर्द को मेरे अलावा कोई दुनिया में भाता ही नहीं है, और आप जरा दुबली पतली समचमकती थ्रिल करती हुई नाचती गाती औरतों वालों के दिलों को तो पूछिए, पता ही नहीं है कि मियाँ सब हैं आज किसके साथ। ये कोई जिंदगी है? इसी तरह बच्चे, इसी तरह घर वाले। तो यकीन करें, इस साथ ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं बहुत पीछे चली जाती हूँ, जब मुझे ये पहली दफा आज समझ आई तब मेरे कॉन्सेप्ट चेंज हुए, कि आज तक यही सुनते आए नेकी करो जन्नत मिलेगी, नेकी करो जन्नत, जन्नत जहन्नम। अल्लाह तो कुछ और खबरें दे रहा है, और लम्हा लम्हा ये सफर आता है, और इंसान को लगता है कि वाकई ये सबसे बड़ी बात है। तो जिस तरह जिस्म को खाना भी मिला ना तो सुकून मिलता है, इस तरह नेकी हमारी रूह की गजा है। आमिला सालेहन, नेकियां करते जाए आपकी रूह सेटिस्फाइड होगी। खाने के बाद तो कोई नहीं कहता खाओ, सोने के बाद कोई कहे सो जाओ तो गुस्सा आता है। इसी तरह ख्वाहिश पूरी हो जाए तो उसके बाद इंसान को ख्वाहिश नहीं रहती। सेम यही बात है, नेकियां करके अपनी रूह को इतना सेचुरेटेड कर लो, फिर ऐसे बंदे को गम भी आ जाए तो कहता नहीं, मेरे रब ने मेरे लिए कोई नुकसान का मामला नहीं किया, मेरी तकलीफ में भी कोई खैर है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें आहसन की बात ले जाए। अब जब आहसन नेकी की बात आती है, और फिर देखिए वाला नजीअन्नहुम अजरहुम भी अहसनी मा कानू यामलून, दोबारा आ गई वही आयत, सेम वही बात आ गई, हम अलबत्ता ऐसे लोगों को इनके आमाल के बदले बेहतरीन देंगे। जिन्हें दुनिया में खैर दे दी है तो अब ये नहीं कि आखिरत में नहीं होगी, दुनिया के बाद आखिरत में भी होगी। एक दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या अब हमें कुरान की तिलावत सुनने का सवाब होता होगा, तो उन्होंने कहा क्या मतलब है, मैंने कहा सच्ची बात है कि अब तो मज़े के लिए सुनते हैं, आवाज़ ही ऐसी होती तिलावत की, गाड़ी में बैठे तिलावत चल रही है एकदम रू नहीं खिंचती। तो मेरे दिल में आया कि ये तो अब हमें जैसे कभी गानों में मज़ा आता था कभी इसमें आ रहा है। तो कहा कि शुक्र अल्लाह का कि उसने हमारी चॉइस बदली। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि नेकियों का नकद सिला तो दुनिया में है, लेकिन असल बदला उससे कई गुना बढ़ा के अल्लाह आखरत में देगा। शर्त एक ही है कि कुछ ना कुछ किया हो, तड़पे हो अल्लाह के लिए, और इसकी ज़रूरत है। आज हम लोग इस चीज़ को अपने बच्चों को अगर दे सके ना, कभी हमारे बच्चे ये ना कि हम बोर हो रहे हैं, हम किधर जाएं, हमें तो छुट्टियों में के लेके नहीं जाते, कोई फ़न नहीं है हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में तो कोई एंटरटेन का सामान नहीं है, और हमें तो ये मसला है और हमें तो वो मसला है। इसीलिए अब अगली आयतों में अल्लाह ताला देखिए फ़ौरन कुरान का जिक्र ला रहे हैं, क्योंकि वला नज़ियन्नहुम अजरहुम बि अहसनी मा कानू यअमलून में आसन अमल करने की जो रग़बत मिलती है ना, वो कुरान पढ़ने के बाद मिलती है। तो इसलिए अब अगली आयत जो बड़ी मारूफ है, सूरत फातिहा की तफसीर में आपको यह आयत कोट कराई जाती है पहले दूसरे दिन के सबक में इंट्रोडक्शन में, कि फ़ाइज़ा क़रात अल कुरआन फ़स्तईस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बल्कि औज़ु बिल्लाह की तफसीर में हम ये आयत बताते हैं कि पस जब आप कुरान पढ़ें तो अल्लाह की पनाह तलब कर लीजिए शैतान मरदूद से। यह है वो आयत जिसकी रोशनी में जब भी कुरान पाक की तिलावत आप शुरू करें तो पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ें। बीच में कहीं से सूरत चल रही थी, दूसरा रुकू चौथा रुकू आप पढ़ रहे थे, आप कुरान खोलते हैं बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और वहाँ से शुरू कर दें। भाई क्यों कुरान पढ़ने बैठे हैं और औज़ु बिल्लाह पढ़ें? क्या हम कोई गुनाह का काम करने बैठे हैं कि शैतान से बचें? तो इसका जवाब क्या है कि शैतान को फिल्म देखने वाले, सिनेमा में बैठे या क्लब में बैठे हुए लोग इतने बुरे नहीं लगते जितने बुरे उसको कुरान पढ़ने वाले लगते हैं। लिख ले, सबसे ज़्यादा शैतान को जो लोग बुरे लगते हैं ना, ना तो वो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, ना मस्जिदों में जाने आने वाले हैं, ना हज और उम्रे पे जाने वाले हैं, क्योंकि शैतान को सब पता कि ये सब करके भी वैसे ही होंगे जब अमल का वक्त आएगा। सबसे बुरे उसको लगते हैं वो लोग जो कुरान से जुड़ जाते हैं। कुरान बंदे की ज़िंदगी में तब्दीली लाता है, इसीलिए कहती हूँ कि आज मस्जिदों की नहीं मदरसों की ज़रूरत है। मस्जिदों में नमाजी नमाज पढ़ के भी झगड़ के निकलते हैं भाई, और कुरान पढ़ने वाले दो झगड़े में भी एक छत के नीचे आते हैं ना तो चंद दिन में उनके दिल साफ हो जाते हैं। कुरान पढ़ने वाले लोगों को बुरे लगते हैं, इसलिए फरमाया कि जब शैतान तुम्हें तेवरियां डाले तो तुम उससे बचो, अल्लाह की पनाह में हो। कैसे आओ, अगला हिस्सा साथ लेते हैं, आयत 99, इन्नहु लैस सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनु। दो सिफात इधर है, नोट कीजिएगा, इसका तो कुछ भी जोर नहीं चलता इन लोगों पर जो ईमान लाए الذین آمنوا اور وعلی ربہم یتوکلون، اور جو توکل کرتے ہیں. پیچھے ہم نے ایک اور صفت پڑھی ہوئی ہے، یاد ہے آپ کو کیا؟ بہت دفعہ آئی، سورہ ہجر میں آئی، سورت آراف میں آئی، لیسا. جی بڑی معروف بات ہے، بہت دفعہ اس پہ، دونوں جتنی دفعہ اس پہ بات ہوئی. شیطان سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اخلاص سے. خود اس نے کہا تھا کہ اللہ میرا زور تیرے مخلص بندوں پہ نہیں جائے گا، یاد ہے آپ کو وہ جملے؟ اب یہاں ذرا اس کا ایک نیا رنگ دیکھیے، پھر تینوں کا ربط بھی آپ دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ شیطان سے پناہ میں آؤ اور فکر نہیں کرو، ایمان والے اور توکل کرنے والوں پر شیطان کا غلبہ نہیں آتا. تو کن پہ آتا ہے؟ وہ ساتھ یا بتا دیا، اگلی آیت ساتھ ہی لیں گے، 100. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوں، اور والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اگر آپ ایک کالم بنائیں نا، ایک طرف لکھیں اللہ زین آمنو، اور دوسری صفت اللہ ربیم یا توکلون، نیچے لکھیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. یعنی جیسے فائر پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، آگ نہیں لگتی، اس طرح ایمان لانے کے بعد اللہ پہ توکل کرنے کی صفت شیطان کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. اس کے برعکس جس کو کہتے ہیں ہائیلی فلیمیبل، جس کو بہت آگ پکڑتی ہے، سلفر، یا اسی طرح آپ لگا سکتے ہیں کہ کاربن، یا کوئی ایسی چیز جس کو آگ پکڑتی ہے نا، شیطان کی آگ کن کو پکڑتی ہے؟ نمبر ایک، شیطان سے دوستی کرنا، اور دوستی بات مانے بغیر ہوتی کوئی نہیں، اور دوسری بات ہے اس کو اللہ کا شریک بنانا. کیسے اللہ کا شریک بنانا ہے؟ ڈیول ڈسیپرز نہیں، کوئی شیطان کو سجدہ تو کم ہی کرتا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی باتوں میں آ جانا. اب آپ دیکھیے اس آیت میں بہت کچھ ہم سب کے لیے. پہلی بات دیکھیے، ہم شیطان کو جو اپنا سمجھتے ہیں نا، وہ ہمارا دشمن ہے. دوسری بات ہے کہ شیطان جیسے خود جنت سے نکلا، وہ انسان کو بھی جنت سے نکالنا چاہتا ہے. ہم کیوں اس ولا پڑھیں شیطان سے، کیوں بچنے کی خواہش رکھے قرآن پڑھتے ہوئے؟ کیونکہ جب بندہ قرآن پڑھنے لگتا ہے نا، تو شیطان بے چین ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے اب یہ بندہ گیا، ہائے میرے ہاتھ سے گیا، میں نے 10 سال 15 سال 20 25 30 40 سال اس کو بہکایا، یہ تو بالکل میری بندی تھی، یہ اب اس کو کیا ہو گیا؟ قرآن پکڑے گی. سب سے پہلے شیطان جو ہمارے پیچھے لگتا ہے نا، پہلی بات کیا کرتا ہے؟ کہ وسوسے ڈالتا ہے، نہیں کرو، بہت مشکل ہے، یعنی آنے ہی نہیں دیتا. پہلا سٹیپ اس کا کہتا ہے کہ قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. جیسے آج امت کی کثرت کو روکا ہوا ہے، قرآن یہ کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ یہ تو چومنے کی چیز ہے، اس کے تعویذ بناؤ، اس کے قطعے لکھو، اس کی یہ ساری چیزیں کرو، اور دیٹس اٹ، ختم. اس طرح کی باتوں پہ لے آتا ہے، نہیں، اس کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں چھوڑو، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ علماء کی کتاب ہے، یہ عام چھوٹے لوگ نہیں پڑھتے، عورتیں تو بالکل نہیں پڑھتی. خیر، ہوتے ہوتے جان چھڑا کر جب بندہ آنے لگتا ہے اس کے پاس، اس کو چھوڑ کے قرآن کے نہیں، جو بھی ہے بڑا جہاد ہے، یہ جہاد بن نفس ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جہاد بن نفس از اکول ٹو قرآن پڑھنا؟ قرآن پڑھتے ہی جہاد بن نفس شروع ہو جاتا ہے، پہلے تو اپنے نفس پہ. خیر، جب انسان تھوڑا سا نکلتا ہے تو سستی ڈالتا ہے، سستی ہونے لگتی ہے. خیر، بندہ اس سے نپٹتا ہے کسی طرح، اس طاغوت سے جان چھڑائی، پھر بوریت، بور ہو رہے ہیں، پھر نیند آ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، سوچ ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، جب اللہ اللہ کر کے آپ خود کو جماتے ہیں، عادت ڈالتے ہیں، کوئی ہفتہ 10 دن آ جا کے، تو اس کے بعد اس کا سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے، سیکنڈ راؤنڈ شیطان. پہلا راؤنڈ آپ کے خلاف، صبح اٹھنا نہیں، 10 دفعہ آپ کہتے ہیں میں آؤں گی، اب میں شروع کر رہی ہوں، اب میں آ رہی ہوں، میں چھٹی نہیں کروں گی، تو آپ کو وہ 10 دفعہ کا کہا ہوا بلوا دیتا ہے، اور مشکل ہے، بس ایک ہفتہ ٹھہر جاؤ، ایک دن ٹھہر جاؤ، آج تو میرا انتظار کر، کارے جہاں دراز ہے، میرا انتظار کر. خیر، جس کو تو واقعی اللہ چن لیتا ہے نا، شیطان کے سب وار نکمے ہوئے، یہ اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے. جوں ہی وہ بندہ جمنے لگتا ہے تو سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا ہے شیطان کا، اس کے ارد گرد والے، گھر والے، کدھر چلتی ہے اب، یہ روز کیا ہو گیا، یہ کیا ہونے لگ گیا، یہ گھر کا حال دیکھا تم نے، یہ بچوں کا حال دیکھا، یہ دیکھو مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ اندر فائلوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، چن چن کے گھر کی گندگی دکھاتا ہے. सास है तुमको गुस्सा, फिर घर वालों के दिल में वसवसे, ये तुम सफाई नहीं करती, ये खाना नहीं पकाती, ये नहीं। वो सब कुछ पहले भी होता था माशाल्लाह से, लेकिन कुरान पढ़ने वाली औरत का तो खूब दिखता है। किस्सा मुख्तसर। और मियाँ साहब अगर कोई मर्द आधे कुरान के साथ तो कहते हैं इसने कमाना कहीं, मेरा मौलवी है, ये खिलाएगा क्या मेरी बेटी को, इसका तो दिल्ली मस्जिद में लगता है, ये वसवसे। बस किसी तरह जान दे के कोशिश करके अपने घर को सेट करके, इससे जान छुटती है, घर वाले जरा सेटिस्फाइड होते हैं, तो थर्ड राउंड। फिर वो जिनका ताल्लुक आपके घर वालों से, आपके पास नहीं आता, अब उसको पता है आप जम गए अल्लाह के हुक्म से, फिर वो आपकी सास की दोस्तों की सूरत में आपकी सास के दिल में बातें डलवाएगा। किधर जाती है तुम्हारी बहू, ये क्या करती है इस उम्र में, हमने तो कभी नहीं सुना। फिर आपके मियाँ साहब के दोस्त, फिर आपके बच्चों के दोस्त, ये अम्मी आपको क्या हो गया, अम्मी आप टू मच हो रही हैं। यानी थर्ड लेवल में आपके घर वालों के दूसरों को, और इसके बाद आपको तो ये हुकूमत तक पहुंच जाता है। कुरान पढ़ने वाले टेररिस्ट हैं, ये दीन में गड़बड़े करते हैं, ये फलान है, ये फलान, पूरी दुनिया को, मीडिया को, आम लोगों को, उन चंद लोगों का दुश्मन कर देता है जो कुरान की बात करते हैं। आज भी दुनिया में हजारों आलिम है, आपको पता है, आलिम से हमारा दीन का काम करने रहे, कभी किसी के बारे में ना कोई मुकदमा ना बात, और जो आप 2, 4, 10 लोगों को अच्छी बात करता देखे तो उनके पीछे कभी CIDs, कभी उनकी चेकिंग्स, कभी कुछ कभी कुछ। के बाद लोग हैं वो कहते हैं हम तो घर से निकलते हैं तो हम इंतजार कर रहे हैं कि एयरपोर्ट में अगर लोगों को आधा घंटा लगना है तो हमें 4 घंटे लगने हैं, और कभी ना हो तो मुझे यकीन ही नहीं आता ये हमें क्यों इन्होंने छोड़ दिया। ऐसी रह जाती फिक्र, क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या हम करते हैं, तो ये सब शैतान के बारे में। अब इतना जालिम दुश्मन है तो क्या फिर हम इसके कब्जे में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। दो खूबियां, आमनु या तवक्कलून। देखिए ये तवक्कुल बहुत बड़ी बात है, जितना आपको अल्लाह पे यकीन होगा ना कि मेरा रब मेरी मदद करेगा, उतनी आपकी मदद होगी। एक वाकया आता है कि हजरत ईसा के पास गालिबन शैतान आया, कहने लगा कि तुम जो बड़ा कहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करता है, ये वो, तो ये आ गए, तुम इसमें कूदो और अपने रब से कहो कि तुम्हें बचाए। समझ गया, यानी ऐसे ही कि जरा थोड़ी सी उनको जोश दिलाया, तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया है, समझ गए, अल्लाह ने हमें पैदा किया है कि हम इम्तिहान दें, ना कि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि हम अल्लाह का इम्तिहान लें, तो मैं तुम्हारे कहने पर यह काम नहीं करता। फिर इसी तरह आपने वो मारूफ वाक्या सुना हुआ एक इमाम का, कि मौत का वक्त था जब, तो शैतान उनके पास आया और कहने लगा कि इमाम तेरे पे तो नमाज ही माफ है, तूने इतनी जो जिंदगी नेकियों में गुजारी तो अब तुझे तो नमाज की जरूरत नहीं। तो कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो आखिरी दम तक नमाज माफ नहीं हुई, वाबुद रब्बक हत्ता याती अकल यकीन, सूरह हिजर के आखिर में हमने पढ़ लिया, तो मेरे से कैसे माफ हो गई। तो मैं समझ गया, मैंने कहा तू शैतान है, तू मुझे ऐसी बात कह रहा है। तो कहते हैं फौरन उसने आवाज दी, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, कि वाकई तुझे इस बात का इल्म था। कहने का देखो अब इसने एक दूसरा हमला किया मुझ पे, कहा मेरा इल्म मुझे नहीं बचा सकता, मेरा रब मुझे तुझसे बचाएगा। समझ रहे, आखिरी दम तक कहते हैं कि डेथ बेड के इंसान के शैतान जो है वो पानी का प्याला लेके आता है कि मुझे सजदा कर ले तो मैं तेरी ये तकलीफ दूर कर दूं। कमिटमेंट तो देखें, इस पर इंशाल्लाह अभी अगले दिनों में एक छोटी सी सीरीज करेंगे कि जिसमें शैतान के हमें बरगलाने के तरीके और क्या हालात होते हैं। यकीन कीजिए कि ये पसीने पसीने कर देता है, दुनिया से जाने तक ये जालिम हमारे पीछे, और जो काम इसको अल्लाह ने दे दिया आसन दर्जे पे करता है, आसन दर्जे पे, यानी भटकाने का, लोगों को बिगाड़ने का काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है। तो हम तो इतने तरीके से कुरान को ही नहीं आम कर रहे हैं। देखिए वो कामयाब है अपनी कोशिशों में, आज हम नाकाम हैं, हमारे गले थक जाते हैं, फिर कहते हैं कि लोगों को फायदा नहीं होता, लोग आते नहीं, लोग जाते नहीं, करते नहीं, वो नहीं करते। और ये सिर्फ पढ़ने तक नहीं रहता, याद रखे, आप सोचेंगे सिर्फ आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए शैतान के मसले, पढ़ाने वालों और सिखाने वालों पर नहीं आता, उनके ऊपर तो ये आंखें खोल खोल के आता है। जो उनके पास आता है वो तो आप भी अभी महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे इस घर में कोई चोर आए, कोई अंदर आए, तो सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे, वो मुझे मारेगा, आप तो फिर छुप जाएंगे नीचे। जितना आप दीन में आगे बढ़ेंगे शैतान को जहर लगेंगे। हर इमाम और हर मुहद्दिस आप उसकी जिंदगी पढ़ के देखें, جیلیں، قید، دشمنیاں، خلیفہ کی طرح، چاہے مسلمان خلیفہ تھے، آپس میں جھگڑے، شیطان ہمت نہیں ہارتا، جو چیز اس کے اندر ہے وہ ہے عزم۔ اسی کا ذکر اللہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم بھی اپنے اندر عزیمت لے کے آؤ۔
ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون